राष्ट्रपति महोदय और मंच पर विराजमान हमारे परम आदरणीय एवं पूज्य संतगण, उपस्थित सज्जन मंडली, वैष्णवगण एवं वैष्णवी, सभी को यथायोग्य मेरा अभिवादन स्वीकार हूँ। मैं पहले आवेदन करना चाहता हूँ, जैसे मुझको मेरे लिए बतलाया गया, मैं एक महान व्यक्ति हूँ, यह बात और चतुर्वेदी जी ने मेरी जो महिमा गान किया, ये तो पल पल में मेरी मृत्यु हो रही है, किंतु मृत्यु नहीं होती है, यही एक आश्चर्य की बात है। मैं बच्चा कुछ नहीं, एक तुच्छ भक्ति का साधक भी अभी नहीं बन पड़ा, इसलिए मैं करबद्ध होकर के प्रार्थना करता हूँ कि मेरे संबंध में ऐसी बातें आप लोग धारणा छोड़ दें कि मैं ऐसा कोई विलक्षण मुक्त महापुरुष हूँ। मैं एक ब्रज की एक भूलिकण का उपासक बनना चाहता हूँ। इस आनंद धाम में आनंदमय अभ्यासात इत्यादि सूत्रों के माध्यम से मैं यही शिष्य व्यास देव जी, सुखदेव गोस्वामी और गुरु परंपरा से यही प्रार्थना करता हूँ। विशेष करके मैं दो एक बातें कहना चाहता हूँ। विदेशों में भी मेरा यही वक्तव्य रहता है, हमारी भारतीय संस्कृति महान है, महान थी, अभी भी महान है, भविष्य में भी महान रहेगी। माँ तमसा ज्योतिर्गमय, माँ तमसा अंधकार, यह संसार उपमों के अंधकार से दूर, आत्मा अनात्म ज्ञान के प्रकाश से उद्भासित ये हमारी भारत भूमि है। अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, सर्वे सुखिना भवन्तु, सभी सुखी, सर्वे निरामया सन, सभी निराम है, ऐसी शुभकामनाएं दी। किसी एक व्यक्ति के लिए केवल, हिंदुओं के लिए नहीं, आर्य ऋषियों के लिए नहीं, समस्त विश्व के, केवल मनुष्यों के लिए नहीं, जितने भी प्राणी जगत जीवन जीवित जीव हो सकते हैं, चाहे गुल्म लता पशु प्राणी पक्षी की पतंग देवता ऋषि गंधर्व इत्यादि सबके लिए कहा गया है। बहुत से लोग मनुष्यों के मानव जीवन के कल्याण में जुटे हुए हैं, मैं उनकी प्रशंसा अधिक नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी बुद्धि सीमित, उनकी दृष्टि में पशु पक्षी की पतंग ये सब प्राणी नहीं, ये आत्माएं नहीं है, किंतु यथार्थ बात ऐसी नहीं है। इसीलिए ये आनंद धाम की स्थापना हुई, और स्थापना करने के बाद में श्री विग्रह इत्यादि स्थापना करने के पश्चात हमारे परम आदरणीय कैला जी ने सारी वस्तुओं को लेकर हमारे पास में आए और हमारे चरणों में न्योछावर कर दी। मैंने कहा जी आप ये क्या कर रहे हैं, तो ये सब कुछ किया है भगवान के लिए और गुरु के लिए, आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। मैंने कहा जी आपको मालूम होगा दशरथ जी और वशिष्ठ जी का सम्राट रामचंद्र जी के जन्म लेने पर, भरतशत्रुघ्न इत्यादि के जन्म लेने के बाद में महाराज दशरथ ने सारी अपना सारा साम्राज्य उनके चरणों में निछावर कर दिया, और वशिष्ठ जी बोले मैंने इसको ग्रहण किया और आप प्रतिनिधि, मेरे प्रतिनिधि होकर के इस राज्य की रक्षा करेंगे, आप देखभाल करें, कभी ना समझे कि आप ये मेरा है, आप प्रतिनिधि हैं इस वक्त में, जब इच्छा होगी हम मैं ले लूंगा। मैंने कला जी को यही बतलाया, मैंने सब कुछ ले लिया किंतु इसके मेरे प्रतिनिधि होकर के इसकी रक्षा करेंगे, और जब जरूरत होगी तो हम ले लेंगे, शायद हमको जरूरत फिर नहीं होगी, वही देखेंगे सुनेंगे और इसकी सुंदर व्यवस्था करेंगे, इसकी रूपरेखा बनाएंगे। किसी समय में मैं इंग्लैंड में बर्मिंघम में था, वहाँ एक सर्व धर्म सम्मेलन हुआ। आज जैसे यहाँ श्री श्री श्रीमद चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण वेद भगवान भागवत भगवान और कृष्ण इत्यादि की प्रतिष्ठा हुई और गोपेश्वर महादेव को अपने परिकरों के साथ में प्रतिष्ठित हुए, विषय कुछ ऐसा ही था। विग्रह पर लोगों की धारणा यह है भगवान तो निराकार है, निर्विशेष है, निरंजन है, अरूप है, निर्विशेष है, फिर उनकी मूर्ति की क्या आवश्यकता है। आदि ऋषियों के अतिरिक्त हमारे मुस्लिम भाइयों ने, हमारे ईसाई भाइयों ने, हमारे बौद्धों ने, जैनियों ने और किसी ने भी भगवान का श्री विग्रह श्री मूर्ति नहीं मानी। दिखाई पड़ता है वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में, श्रीमद् भागवत में और जगन्नाथ जी की प्रतिष्ठा अनादि काल से ही देखी जाती है। उनकी धारणा है यदि उस परब्रह्म का, गॉड का, खुदा अल्लाह का यदि श्री विग्रह होगा तो उसका जन्म मानना हो गया, फिर उसकी मृत्यु भी माननी पड़ेगी। इधर से उनका कोई श्री विग्रह नहीं मानते, किंतु बड़े खेद की बात है कि हमारे बाइबल के प्रथम चैप्टर के प्रथम अध्याय के नहीं बतलाया गया गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज। गॉड ने, ईश्वर ने, ब्रह्म ने अपने शरीर के अनुरूप मनुष्यों को बनाया। यदि भगवान का कोई रूप नहीं है तो भगवान ने अपने रूप के अनुरूप में मनुष्यों को कैसे बनाया, तो बाइबल से काट करके निकाल रहे उनकी क्षमता हो तो नहीं निकाल सकते। उसी प्रकार से हमारे कुरान का एक हदीस है इन्ना लहा खला का मेन सूरत की, खुदा तआला ने, अल्लाह ने अपने रूप के समान में मनुष्य को बनाया, तो वो लोग निकाल दें यदि क्षमता हो तो, वो लोग ही नहीं निकाल सकते। इसलिए वेदों में भी जैसे सत्य सम्यक इदम अग्रासी इत्यादि स्वक्षत इत्यादि बतलाया गया उपनिषद में, उन्होंने इच्छा की न तत्कर्म करण विद्यते न तत्समस्ता विकत विद्यते परास शक्ति विबुझाई को सूर्यते स्वभाव की ज्ञान पुरस्कृत। अरे भगवान में काम तो नहीं है किंतु सब कुछ सुनते हैं। भगवान का यह ऐसा मनुष्य रूप नहीं, मॉर्टल स्वरूप नहीं है, मत्स्य शरीर नहीं है, किंतु है, सर्वत्र चलते हैं, पैर नहीं है, सर्वत्र चलते हैं। तात्पर्य क्या, तात्पर्य क्या है, तात्पर्य है निर्गुण ब्रह्म, निर्गुण और सगुण दोनों एक ही है। तुलसी जी की रामायण इत्यादि देखेंगे, हमारे भागवत को देखेंगे, निर्गता गुणा जस्मा जिससे सारे प्राकृत गुण निकले हैं, अप्राकृत सर्वगुण संपन्न वो भगवान है। इसलिए भगवान का रूप है किंतु कैसा रूप है, उनका रूप है निर्गुण। क्या निर्गुण माने प्रकृति से अतीत है, सब सर्वगुण जितने भी हो सकते हैं सब गुण में निवास करते हैं। इसीलिए अभी वक्ता महोदय ने बतलाया आनंदमय आभ्यासा, सूत्र में कहा गया आनंदम ब्रह्म सचित आनंदम ब्रह्म। किंतु व्यास जी जो उसके सूत्रों को बनाने वाले हैं, ब्रह्म सूत्र के रचयिता हैं, प्रकाशक हैं, उन आनंदमय अभ्यास आनंदमय का शंकराचार्य जी कुछ चक्कर में आ गए हैं तो शंकर, किंतु जीव कल्याण की दृष्टि से ऐसा कुछ मोह प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा ये गुरु जरा कम ज्ञान वाले हैं, अपने वेदांत सूत्र की सारी व्याख्या में उन्होंने बताया, भाष्य में बताया, समझ नहीं कर सके। आनंदम ब्रह्म आनंदम एवं ब्रह्म दोनों संभव है, अलग अलग नहीं, ग्लास में पानी के समान ही नहीं, ग्लास भी है पानी भी है दोनों है, उसके बाहर भी सब कुछ वही है। बस दृष्टा का ये प्रश्न है, दृष्टा कैसा है, इसलिए ब्रह्म का रूप है। यदि हम लोग कॉज कारण और कार्य दोनों कार्य कारणवाद अथवा कॉज एंड एक्शन थ्योरी को हम देखें तो जिसको हम कार्य रूप में देखते हैं उसका कारण भी जरूर होगा, बिना कारण के कार्य हो नहीं सकता। जब तो मायनी भूतानी जायते ये नहीं जाता नहीं तत्सम विसंति तद ब्रह्म, जैसे ये सारा जगत निकलता है जिसे पालित पोषित होता है रहता है और अंत में जिसमें वो सब जगत मिल जाता है, जगत और जगत से प्राणी सब मिल जाते हैं वो ब्रह्म है। तो ये कारण है वो परब्रह्म। यदि परब्रह्म में ये रूप न हो तो ये रूप आया कहां से, आया कहां से? इसलिए समस्त जितने भी रूप ये देखते हैं सब उस परब्रह्म में है, किंतु सर्वोत्तम मनुष्य रूप है जिसको मनु और शत्रुता के रूप में पहले उन्होंने प्रतिष्ठित किया। इस तरह से भगवान निर्गुण होते हुए भी अप्राकृत सद्गुण संपन्न सब समय सगुण भी है, ऐसा नहीं कि वो सब निर्गुण है और मनुष्यों के ऊपर में कृपा करने के लिए सगुण हो गए, नहीं, एक साथ में दोनों ही। इसलिए भगवान का रूप है, गुण है, क्रिया है, हम उसी रूप की हम उपासना करते हैं। आज उसी श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री राधा कृष्ण और सदाशिव रूपी गोपीश्वर महादेव की यहाँ पर स्थापना हुई आनंद धाम में। सचमुच में यह आनंद धाम आनंद धाम ही हो, संत यहाँ पर पधारेंगे, अपने अमृत रूपी भाषणों से सबका कल्याण करेंगे। और जो जैसे फिर वृद्धों की स्थिति बतलाई गई, यहाँ पर वृद्धों का भी पालन पोषण होगा, चारों वर्णाश्रमियों का यहाँ पर लालन पालन होगा, अच्छे अच्छे ब्रह्मचारी बनेंगे, देश का कल्याण करेंगे, जगत का कल्याण करेंगे, वो तो ठीक है अपने स्थान पर, किंतु सबका यही अंतिम सार है कि सभी प्रभु की कृपा को प्राप्त करें। यह कृपा दो रूपों में है, एक भक्त कृपा के रूप में है और एक भागवत की कृपा के रूप में। भगवान की कृपा किंतु भक्तों के कृपा के अधीन होती है, इसलिए दोनों की कृपा हम पर बरसें और विशेष करके आनंद स्वरूप कैला जी पर बसे और हम सब लोगों पर बसे, भक्तों पर भी बसे, यही कह करके अपने अपना वक्तव्य समाप्त।
ওরকম বৈষ্ণব যদি থাকেন তো সে চরণের জরনের ভুলি যদি হতে পারে, মারুক পেটও শাসন করুক, গালি গাল যা কিছু করুক। আর এই আমার থাকবে জীবনের উদ্দেশ্য, আমি জীবন আমার যা আছে, আমার রহন সহন থাকা যা কিছু সব এই জন্য ভজনের জন্য, এইরকম ব্রজে ভজনের জন্য, তাহলে হতে উপায়। বিনা ভগবত কৃপা অথবা বৈষ্ণব কৃপাতে এই প্রেম যা হবে, কোন ভাব রতি যা সম্বন্ধে আমি বললাম, ওটা হতে পারে না। এই জন্য কৃষ্ণ প্রসাদ অথবা কৃষ্ণ ভক্ত প্রসাদ ভাব আর সাধন অগ্নিবেশ। প্রহ্লাদী মহারাজ, নারদ ঋষি কিংবা আমাদের সব দেখা যায় মহাপ্রভু পরিকরগণের যারা সাধনে ভান করেছেন সিদ্ধ হলেও, অথবা যারা সাধন সিদ্ধ ছিলেন না তারা সাধন করেছেন, ওদের সাধন অভিনিবেশ, সাধনের মধ্যে একেবারে সে নিবেশ অভিনিবেশ, তাহারা কে বানত ও বানতিকার চলে গেল। দ্বারাই গীতা পাওয়া যায়, কিন্তু সাধন অভিনিবেশ মানে রাগানুগা ভক্তির সাধন, বিশেষ করে রূপা রূপার বৈষ্ণবগণের আনুগত্য। মহৎসঙ্গে জীবে ভগবতী ভগবত ভক্তি সাধনের যে প্রবৃত্তি হয়, মহৎসঙ্গে মহৎসঙ্গ কাকে বলছেন? ওই তিনজনকে বলছেন, প্রথম অবস্থা নারদ, আর তারপরে সুখদেব গোস্বামী, আর তারপরে তৃতীয় অবস্থা ফের আবার নারদ ভগবত পরিকার দেশ শরীর লাভ। ওই রকম বৈষ্ণবগণের কৃপা এই রকম করে দিবে বাস। আর মধ্যে মধ্যে কারি যদি থাকে তাহলে হরিকথা বলে তোমার সাধন মধ্যে রুচি আর বেশি লাগিয়ে দিয়ে আসবে। তবে রুচি কৃপাও প্রায় একই রকম, ঈশ্বরপুরী পাঠ কবি সচী মৈয়া কে ঘর পর গে, মৈয়া নে দেখা যে তো বহুত অচ্ছা সাধু হ্যাঁ, সমস্যা বাবা হমারে ঘর মে রসোই আপনি বনেগি প্রসাদ পায়ে, তো হমারে ঘর মে ঠাকুর জি কি সেবা, নিত্য সেবা, হম লোক ব্রাহ্মণ হ্যাঁ, তো হমারে ঘর মে প্রসাদ ঠাকুর জি কা বনতা হ্যায় ও প্রসাদ পা লিজিয়ে, और नहीं पाएंगे तो फिर चावल दाल आटा सब्जी सब ले लीजिए, चूल्हा हम साफ कर लेंगे, आप रसोई बना करके भोग लगा करके खाइए। सचिव ब्राह्मण हमारे मन जैसे वही सचिव ब्राह्मण हुई ईश्वरपुरी पाली यानी बोलते जैसे हमें एक बार गए थे ना अपना बाड़ी, जब सचिव ब्राह्मण বলে যে আমি নিজে থেকে আমানিয়া ভোগ লাগাবো, আমানিয়া মানে কি ভোগ লাগানো নাই এইরকম আমানিয়া ভোগ লাগাবো। আচ্ছা তখন তিনি চুলা চাকি সব আবার সাফ করে দিলেন, আর তাকে আটা চাওয়াল ডাল যা ও দরকার হয় সব পুষিয়ে দিয়ে দিলেন, মশালা নিজে থেকে রান্না। এখন দুটাই কৃপা, ওই চাওয়াল ডাল ইত্যাদি দেওয়া এটা তো কৃপা, তাহলে বলবে কিরকম? আর চাউল ডাল সবজি তরকারি করে দিয়ে রান্না করে মালপুয়া ইত্যাদি আর ঠাকুরকে ভোগ দিয়ে দিচ্ছে, কোনটা ভালো?
বানা বানায় মিল যায়
ওইটি ভালো, যে ভোগ লাগিয়ে একেবারে সব দিয়ে দিচ্ছে। ভোগ লাগিয়ে দেওয়াটা হচ্ছে ভগবত কৃপা অথবা কৃষ্ণের কৃপা অথবা মহাভাগবতের কৃপা, আর সাধন আমি নেবে মধ্যমাধিকারী তাকে সাধন মধ্যে নিযুক্ত করে দিয়ে আর তার দ্বারা সাধন করছে, ওকে সাধন করা দিতে হয়। বিনা কিসি সাধনকে যে ভাব অকস্মাৎ হঠাৎ উদিত হয়ে যাতা হুসে কৃষ্ণ দাস প্রসাধন, ওই সাধন নেই কি আপনি আপ যে হো যাতা হ্যাঁ সিদ্ধি হো যাতি হ্যাঁ वो भगवत कृष्ण प्रसाद धाम या कृष्ण भक्त का प्रसाद धाम। जैसे नव कुमार मणिग्रह कौन साधन किया जी उसको भगवत प्रेम हो गया? क्या किया? कुछ नहीं, अकस्मात हो गया, नारायण जी की कृपा से समझो अभी संपाद दिया। और दूसरे जन्म में कृष्ण आकर के संग बने, तुम्हारा हमारा प्रतिभाव उत्पन्न हो गया है, अब तुम मुक्त होकर के बोलो वैकुंठ में हमारा स्निग्ध कंठ और मधुकंठ हो। ये प्रसाद करोड़ों जन्म लगता है, उतना ने कौन सा साधन किया जो कृष्ण ने उसको गति दी? ये कृपा प्रसाद। तो जो बिना साधन के अकस्मात भाव उदित हो जाता है वो प्रसाद, उसके लिए प्रतीक्षा मत करो ये कब होगा। साधन करते चलो शुद्ध साधन, जैसा कि इस ग्रंथ में भक्ति विनोद ठाकुर ने दिखलाया है, ऐसा साधन है। अभी जिस रूप में साधन हम लोग कर रहे हैं वो साधन से नहीं होगा। साधन जाओ निर्दय कभी कभी देखा जाता है, साधन रूप में साधन अभिनिवेश जो है यही कैन यू टोल्ड इन हिंदी। साधन भाव कृष्ण यदि किसी को वरदान दे, किसी को दर्शन दे या उसके अंतरकरण में स्फूर्ति प्राप्त करा दे, किस प्रकार से हृदय गोस्वामी उसके हृदय में अंतर स्फूर्ति कराए बस हो गए, वरदान देने की जरूरत नहीं, बस भीतर ही भीतर महाप्रभु के अवतार में ये तीनों प्रसाद भाव, भक्त प्रसाद, भगवान प्रसाद और साधन अभिनेश, तीनों का उदाहरण हर स्थान पर दिखलाई पड़ता है। महाप्रभु को देखकर के असंख्य लोगों को भाव उदर, जहाँ जहाँ गए हजारों लोगों को भाव उदर हो गया, विप्र को भी हो गया, जगाई मधाई को वरदान दिया महाप्रभु जी, बस हो गया। इस प्रकार जीव गोस्वामी के अंतर में जीव गोस्वामी कहाँ थे? नित्यानंद प्रभु जी की कृपा से अंतर में स्फूर्ति कराए। कृष्णदास कविराज गोस्वामी के अंतर में महा नित्यानंद प्रभु की कृपा से, इस तरह से दो उदाहरण है। नाथ जी की कृपा से ध्रुव प्रहलाद को भगवत भाव पैदा होता है, और भगवान ने भी उनको पहले हृदय में स्फूर्ति कराई और अंत में उनको दर्शन देकर के वरदान दिया। रूप सनातन इत्यादि पार्षदों की कृपा से असंख्य लोगों को भगवत हृदय में भक्ति भाव उत्पन्न होते, उसका स्थायी भाव के जो लक्षण है उसको बतला रहे। अतः किसको किसी को यदि भगवत भाव प्रकट हो गया, रति उत्पन्न हो गई, तो उसका लक्षण बतला रहे। भावित होने पर साधकों में इच्छा की क्षमा, उसका बदले में मैं उसका बदला ले लूंगा ये नहीं, शांति क्षमा। कोई किसी ने हमारे प्रति कुछ किया, हरिदास ठाकुर को 22 बाजार में मारा, हे प्रभु इनको क्षमा, चित्त विचलित नहीं होता। प्रहलाद महाराज उसके पिता ने कितना प्रहार किया, ऐसे वैष्णव होकर के शांत रहो, बदला ले लूंगा, ये कनिष्ठ वैष्णव में भी नहीं है, इसलिए अभी कनिष्ठ सत्व ही नहीं आए, इसे बदला लेने की भावना मत रखो, क्या करो याद रखो सत्य अनुपम पम सत्य शास्त्र में याद रखो। अभ्यस्त कालोत्तर व्यस्त की चिंता में उसने किया तो हमें क्या करना चाहिए, अथवा विषय भोगों की चिंता कर रहे हैं नहीं, अभ्यस्त काल दिन रात भगवत भजन साधन ग्रंथ पढ़ने में, हरिनाम करने में, दंडौत करने में, ब्रज और नवदीप इत्यादि धाम पूरी धामों में जाने में, ये सब में सब समय तक धाम की परिक्रमा करेगा किंतु चिंतन करते करते करेगा। विरक्ति मन शून्यता आशा बंधन उत्कंठा नाम कीर्तन में रुचि कृष्ण के गुण ध्यान में आसक्ति, कृष्ण की लीला स्थलियों में प्रीति, ये सब लक्षण दिखाई पड़ते हैं। जो मेरा कारण सत्य शोभ नहीं है, जो मेरा कारण है शोभ नहीं, सदा कृष्ण भजे नहीं करे काल फल, एनो काल क्षय नहीं करता, सब समय भजन करता। कृष्ण कर विषय मेरा प्री सदा रस, मान था मिले वो अभिमानी नहीं है, अवश्य पाई में कृष्ण कृपा आशा करे, कृष्ण भजे अहरा व्याकुल। हरे कृष्ण नाम गाने मुझे निरंतर, कृष्ण गुणाख्याने आश्लि कर सदा कृष्ण बसती रखा ने, यही अनुभव भवान गुरु मित्र हमारे, ये सब भाव जिसको रखी हो गई, ये सब अपने आप उसमें लक्षण दिखेंगे, याद रखो ऐसा ही करने, नकल मत करो अपने आप आ जाएगा, और यदि नकल करोगे तो चौपट हो जाए, नकल मत करो, शांति नहीं है ऊपर से क्षमा दिख रहा है, वो की लालसा है, चावल चावल परोसा तो नहीं लेंगे क्योंकि विरक्ति है, और परमान आया तो बस मटकी भर करके परमान रख लिया और तबा तो अभी अभी आया तो भी नहीं, मलाई आई मलाई ले लिया उसमें राबड़ी और मलाई लेकर के परमान में करीब करीब 2 किलो खा लिया, किंतु अन्न साग दाल कितना बड़ा भारी पैरा, मार्केट में बंदर भी इतना पैर आगे नहीं कर सकते। क्रोध या चंचलता का कारण उपस्थित होने पर, क्रोध या चंचलता कारणोपतन में शांत रहने को शांति कहते हैं, छोड़ ना दे वैष्णव के चरणों को, चाहे मर जाएंगे मिल जाएंगे किंतु छोड़ेंगे, असत्य में सेवा की भावना से रहेंगे, सब लोग हमारे सामने कितने लोग आए, कितने लोग लष्टम पष्टम होकर के कहाँ चले गए, कितने आदमी हजारों आदमी आया, हजारों आदमी बड़े बड़े योग्य लोग आए, किसी ने तो कहा गुरु जी मैं आपके पास में अभी आपके चरणों की सेवा करूंगा, घर हम बहुत धनी आदमी हैं, घर से 50,000 रुपया ले आ रहे हैं आपको देंगे, गुरु जी ने कहा ये पैसे मत लाओ तुम यही करो, तो नहीं कि वो गुरु जी वो रुपया खर्चा किस लिए होगा, बैंक में पड़ा हुआ लिया, फिर आए नहीं, मामू ने मुख नहीं देख रहा है, साधक में स्वतः ही क्षमा गुण प्रकाशित होता है। उदाहरण परीक्षित महाराज ने मुनि बालक संजीव के द्वारा अभी संपात पाया, मुनि बालक संजीव के द्वारा उनको अभी संपात प्राप्त हुआ, अर्थात साप दिया, मृत्यु जान करके भी अशांत नहीं हुए, उसके बदले में वो चाहते तो राजा से दंड दे सकते थे, मरेंगे तो मरेंगे इसको तो मार जाए, ये तो नहीं किया, अव्यक्त काल समय दर्श न जाए, इसलिए निरंतर हरि भजन में तत्पर, हरिनाम करे कीर्तन करे ग्रंथ देखे, सुख सनातन इत्यादि ने योग्यता रहने पर जैसे ग्रंथ प्रकाशित करे, प्रचार करे भगवान नाम का, सब समय 24 घंटा उसमें चित्त विरक्ति, संसारी भोग विषय में स्वाभाविक अरुचि का नाम व्यक्त, भगवान के चरणों में प्रीति रहने से अपने आप इसमें अरुचि हो जाए, मन शून्यता, जाति वर्ण आश्रम धन सौंदर्य उच्च पद इत्यादि का अभिमान होता है, जाति में वर्ण में विद्या में रूप में उच्च पद से अभिमान होता है, इन सब के रहने पर भी मन में मान न रहे वही मान शून्य, और कभी भी अपने मन की इच्छा प्रतिष्ठा की इच्छा न रहे, कृष्ण मुझ पर अवश्य कृपा करेंगे, इस प्रकार दृढ़ विश्वास के साथ में भजन में मनोनिवेश का नाम आता है, कृष्ण जरूर कृपा करेंगे, बिना कृपा के वो रह नहीं सकते, रघुनाथ दास विलास पुष्पन जी ने ऐसे ही कहा है, आशा पर पंचेत कृपामयी विधाशक्ति नहीं वकीन में प्राण एक विजयन बरोर मकान हे राधे हे बरोर सुंदर जंग प्रदेश वाली राधे के असंत सुंदर, मेरी आशा अमृत समुद्र को प्राप्त करने की बात किया चंद्र को। मेरी आशा क्या है, जैसे समुद्र से अमृत होता है मंथन करके पाया जाता है, वैसे मेरी आशा बड़ी दुर्लभ है। मैं उसे प्राप्त करने की आशा में बड़ी उत्कर्षता से जीवन का दिन काट रहा हूँ। अब तुम कोई दुखी पर दया करो, तुम्हारी कृपा से मेरा जीवन, मेरा बजवास और सुख्या कृष्णदास वो सब कुछ। तो उनका विलाप को समांजलि पढ़ना चाहिए, वैसे ही भाव होना चाहिए। समुत्पन्न था अभिष्ट प्राप्ति के लिए अत्यंत प्रगाढ़ लोभ ही समुत्पन्न था। ये वैष्णव के पास मृतासुर की प्रार्थना में यह कन्हा दिखाई अजात पक्षाई नाम गाने सदा हरनाम संकीर्तन में, नाम कीर्तन में, नाम जप में, सब प्रकार के जितने प्रकार के भजन साधन हैं उन सब में नाम भजन के सब। किंतु याद रखो वैष्णव के अनुभव में हो, वो भी वृंदावन में हो, वो भी संबंध ज्ञान के करीब सब होगा। ऐसे ही नाम कर रहे हैं मायावादी भी तो नाम करते हैं, माया में थाली लेकर के वो 3 लाख नाम करते हैं, तुम तो 1 लाख भी नहीं, किंतु उस नाम से नहीं, वैष्णव के शुद्ध वैष्णव के अनुभव से। याद रखो तन्नाम रूप चारी सुकृष्णानी क्रमेण रचना मन जीनी और श्रीतन ब्रजे सदानुरागी जनानुगामी कालमये अखिलामि हित्युपदे। बिना वैष्णव के अनुवर्त में जो नाम करते हैं, सेवा करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो बेटा उसमें स्फूर्ति नहीं होगी। यहाँ तक कि उनको जितने तो रसी की तो बात किया श्रद्धा ही जो श्रद्धा पक्का श्रद्धा है वही नहीं आई। भगवान के गुणाख्यान में आ सकते, भगवान के गुणों का आख्यान। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, भगवान के गुणों का, भक्ति के गुणों का, भक्तों के गुणों का आख्यान। वृंदावन धाम में, नवदीप धाम में, पूरी धाम में, भगवत धाम में, विशेष करके ब्रिज में, नवदीप धाम में ये बात करने की लालसा हो, बेटी हो। गौरा अमार ये समस्ताने સામવાસી જને પ્રણતિ કરિયા માગી બકરી પારોલે, માગી બકરી પારોલે। એટલે પ્રાર્થના કરકે એ બધી વાત યહાં પર કૃષ્ણ કી કૌન લીલા હોય, ये स्थान में कौन सी लीला हुई, उनके चरणों में प्रणत होकर के उस भाव से यदि करें तो ये प्रसाद प्रसाद भी। शरीर के द्वारा धाम बात न हो तो मन ही से धाम बात बात करो, और भागवत श्रीमद भागवत का श्रवण कीर्तन करो के लिए उत्तम अधिकारी के साथ। इस प्रकार से प्रगाढ़ भाव आने पर साधक के अनुभव भी होते हैं, वो क्या है, नित्यम विलखितम गीतम क्रोशनम तन्मोतरम ओंकारो चिंबण पाठकुमारोकान पक्षित लाला श्रावटा सत्य पूर्ण हितकादयो अभीत। ये सब भाव निकाल हो गया। आज हम लोग अपना व्रत समाप्त करेंगे, समापन करेंगे कार्तिक का, नए रूप में तैयार होंगे महाप्रभु के धाम की, महाप्रभु के धाम में जाने नए रूप। गुरु महाराज जी इसी को कहते हैं, 1 बार चाबी घड़ी में देना है, 1 वर्ष में 3 बार घड़ी में चाबी दो। पहले महाप्रभु जी के आविर्भाव के समय में, दूसरा कार्तिक महीने में और रथ यात्रा, और तीसरा कार्तिक। हम लोग ऐसा किया है और फल से ही अभी तक हम लोग बचे हुए हैं और अनुभव कर रहे हैं कि हम लोग कुछ भगवान की तरफ में कुछ भजन करने की लालसा आई, किंतु जैसी आनी चाहिए वैसी नहीं आई है, तो अभी कुछ लालसा जग रही है। ये उन्हीं लोगों की कृपा है, महाप्रभु की कृपा और सब भक्तों। तो तुम लोग भी और सब कुछ छोड़ करके, जाति जंजाल छोड़ करके, प्रतिष्ठा छोड़ करके, संसारिक दायित्व छोड़ करके बस यही हमारा प्रभु से भी विनय है। और कभी कभी आदमी क्रोध कर देता है, क्रोध में भूल जाता है, क्रोध मत करो। यदि किसी के चरणों से क्रोध कर लिया या करके अभी क्षमा मांगो, आज जो क्षमा मांगने वाला है क्षमा नहीं करता है समझो ये वैष्णव नहीं है, तब तो फिर कोई बात नहीं, वैष्णव को क्षमाशील होना चाहिए, वो क्षमा कर देगा यदि कुछ भी है, और वैष्णव क्षमा नहीं करता है समझो वो वैष्णव नहीं, फिर अब कोई जरूरत नहीं है हरिनाम करो उससे हो जाए, और यदि वैष्णव है तो कहा जीते भाई उसको क्षमा कर उसे क्षमा कर फिर ठीक है, हृदय में ज्ञानी रहने से भजन कैसे होगा, भगवान हृदय में चंचलता न हो ग्लानि न हो नहीं तो भगवत भजन नहीं हो, इस तरह से भजन ही अपने जीवन का मुख्य प्रयोजन हो और तुम लोगों का कल्याण कहने हो फास्ट है, अरे इस समय तो हिंदी में बोला है स्पोकन हिंदी
Krishna, Bob might arise in the heart. The example given is like Sri Narayan Muni. Narayan Muni had internal smriti, internal vision of the Lord. So this is the mercy of Bhagavan, the example of how Bob arises by the mercy of Bhagavan. So Acharyas have given three methods by which Bob may awaken in the heart.
साधन सायंकालीन भजन सत्भाव रति आफ्टर सो मेनी थिंग्स अबाउट रति स्पेशली आफ्टर इफ रति कम देन छंदी अभ्यस्त कालोत्तम विरक्ति मान शून्यता सा बंद बनता नाम गाने अशक्ति सदा गुणाख्या में प्रति तक बसे स्थले इत्यादि अनुभव प्रति इज मनी सचिव इन अवर हर्ट देन शांति क्रोध और की चंचलता का कारण उपस्थित होने पर विश्राम करने को शांति कहते हैं, इस देयर इज समथिंग दैट अवर माइंड शुड बी वेरी रेस्टलेस और एंगर मे कम बट नो एंगर नथिंग, इज लाइक प्रसाद महाराज हरिदास ठाकुर नाउ यू कैन जस्ट keeping your hands on your heart, that's where we are. Sadhak mein swatah kshama gun hota hai. Haridas Thakur kehte hain ye inko kshama kare, ye abodh hai. Kshama gun hona chahiye. Udaharan swarup Parikshit Maharaj ne muni balak singh ji ke dwara abhisampat paya. Abhisampat diya singh ji ke rishi ne, jao 7 din tak tak dhartega. किंतु क्रोधित नहीं हुए, उसको कोई दंड नहीं दिया, धीरे स्थिर उनके हरि कथा सुनने लगे। उस समय याद रखना चाहिए सत्य अनुकंपा सुषम क्षमा गुणजान एवास कृतम विवास विधवास मत सिद्धांत नमस्ते मुक्ति क्षमरा एक्सप्लेन जीते सत्य अनुकंपा मान अपमान जो आ रहे हैं इसका कारण स्वयं मेरे पूर्व जन्म के कर्म है, अथवा भगवान की कृपा से हमको शुभ करने के लिए आता है, फिर क्रोध नहीं आएगा। अभ्यस्तकाल अभ्यास वो तो खराब नहीं है, अभ्यस्तकाल एक मिनट का समय में व्यर्थ न जाए, चलते फिरते उठते बैठते भजन में लगा रहे, साधन भजन में लगा रहे, नाम संकीर्तन में हरि कथा कीर्तन में किसी न किसी रूप में वो लगा रहे, विरक्ति संसारिक विषय भोगों में स्वाभाविक रूप में अरुचि रहे। यदि भोग आए तो उसे विरक्ति रहे। कृष्ण का जिसने के भोग के लिए ये है ऐसा समझ करके यथाजोग्य उसका सम्मान दिया। कोई भी वस्तु हो वो कृष्ण के भोग के लिए है, हम लोगों के लिए नहीं। उसको भगवान को अर्पण करके उसका जो प्रसाद है वही उपग्रह विराक्ति मान सूर्यता। चैतन्य महाप्रभु जी ने भी बतलाया है तृणादपी सुनी के नरोदपी सही सुनना अमानी ना मान दे। अपने लिए मान की लालसा कभी किसी से न करे, नहीं तो वह जीवन पर दुखी रहेगा। मत कर सोचे कि मैं सिंह से भी दीन नहीं हूँ। मान सम्मान हमारे गुणवर्गों का है। जाति वर्ण आश्रम धन ऐश्वर्य सौंदर्य उच्च पद आदि सभी मान उत्पन्न होता है। सही है। और एक है प्रभुता पाल काय मदनारी। प्रभुत्व पाकर के जाति वर्ण आश्रम धन ऐश्वर्य उच्च पद आदि सभी मानो, ये सब एक अभिमान के इसको ना सबको अभिमान हो जाता है। किंतु वैष्णव लोग नहीं बने रहते हैं। प्रहलाद महाराज जी को कभी भी अभिमान नहीं हुआ, ध्रुव को नहीं हुआ, चित्रकेतु महाराज जी अपने दूसरे तीसरे जन्म में। इन सबके रहने पर हृदय में मान न रहे वही मान सुनता है। तो धन जन पुत्र परिवार सबसे धन संपत्ति से परिपूर्ण रहने पर भी तनिक भी अभिमान ना है। विशेष करके सौंदर्य रूप और विद्वता इत्यादि का दर बड़ा भारी होता है, तो ये सब न रहे। आशा बंधा यू कैन एक्सप्लेन सम मेरे बराबर जगत में बहुत कोई नहीं है। कृष्ण इसको समझ गए और उन्होंने कहा कि अर्जुन तुम धन में कुल में मर्यादा में बल में धनुर्विद्या में तुम्हारे समान कोई नहीं है। सचमुच में यह बात ठीक है। एक बात करो, ऐसी कोई चीज ले आओ जो तुमसे तुच्छ हो। ऐसी कोई भी वस्तु ले आओ जिसको तुम सुख से समझते हो, उसका कोई उपयोग नहीं है, ऐसा कोई चीज लाओ। अर्जुन जहां जाते वहीं पर वो ऐसा प्रमाणित कर देता है कि तू ही सबसे तुच्छ हो। अंत में विचार करके देखा कि ये शक्ति मन बैठाना जो कर दिया है इसे सभी घृणा करते हैं, इन्हें जरूर हमसे तुच्छ होगा। ऐसा सोच करके उसको उठा करके और कपड़े में बांधने लगे ले जाने के लिए कृष्ण के पास में, तो वो खड़ा हो गया और बोला अरे हमको कहाँ किस लिए ले जा रहे हो, तो तुम संसार में सबसे तुच्छ पदार्थ हो, घृणित व्यक्ति हो, तुमको कोई नहीं चाहता। उन्होंने कहा ये देखो तो कल में बड़ा सुंदर फल था, आम लेबू और कितने सुंदर था पकवान था, राबड़ी थी मलाई थी था, और तुम्हारे सामने से मैं ऐसा आज हो गया, तो समझ लीजिए तुम हम क्या हम हनी। यह सुनकर अर्जुन बड़े लज्जित हुए और कृष्ण के पास खाली लौट गए कि प्रभु हमारे जैसा नहीं, हमारे जैसा घोष या कपति या नहीं कोई जगत में नहीं। कृष्ण अब समझो ये मान सुनने का सब समझे, इस मान का कोई भी मूल्य नहीं है। कहो कहो कृष्ण हम पर जरूर कृपा करें। क्यों? मैं उनका नित्य दास हूँ, वह हमारे नित्य प्रभु है, वे बड़े दयालु हैं, इसीलिए उनका अवकाश होता है। इसे जरूर कृपा करेंगे। इस प्रकार दृढ़ विश्वास के साथ में भजन में मनोनिवेश करने का नाम आता हूँ। किंतु यह याद रखना चाहिए जरूर मिलेंगे तो चुपचाप दिन भर बैठे रहे हाथ पर हाथ दर्द, ऐसा नहीं। हाथ पर हाथ रख करके चुपचाप सोया है, कोई भजन न करे,
विद्या का बंध नहीं है, उत्कंठा होनी चाहिए उसमें। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी विलास पुष्पांजलि में कहते हैं, आता भरण्यम कारो मैं कृपा मई विधास में प्राणी ब्रजेन परिण आता हे बरोड़े राज, हे परम सुंदरी सुंदर जंघों वाले राज के, मेरी आशा अमृत समुद्र को प्राप्त करने की भांति अत्यंत दुर्लभ है। मेरी आशा क्या है? अमृत से समुद्र में गोता लगाने के लिए है मेरी आशा, और बड़ी दुर्लभ है, ये संभव नहीं है। मैं उसे प्राप्त करने की आशा में बड़ी उत्कंठा से जीवन के दिन काट रहा हूँ। आज होगा, आज कृषि मिलेंगे, आज कृषि मिलेंगे, आज मिलेंगे। आप तो मुझे दुखी के ऊपर में तैयार है, तुम्हारी कृपा के बिना मेरा जीवन, मेरा परिवार और तो क्या कृष्ण दास के जीवन सब कुछ करते। इसका नाम है आशा बंधन। एक किसी कवि ने कहा है, प्राचीन नाम भजन दुष्कर्म से बताऊंगा दुष्कर्म में नृदय भक्ति ले सागर सत्य विश्वी अवर सभाकरण कारुण्य रीति आशा बिंदु शिखल बैठी उपैतिहां सत्य। और यानी रघुनाथ दास गोस्वामी और मैं जब ये स्मरण करता हूँ रूप सनातन गोस्वामी इत्यादि कितने कठोर भजन किए, यहाँ तक कि ध्रुव जी ने कितनी कठोर तपस्या की, नारद जी ने कठोर तपस्या की, और